मुख्य समाचारों में उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ की स्थिति जारी। वृद्ध देखभाल प्रणाली के प्रतिनिधियों द्वारा फेडरल संसद के बाहर रैली और भारत में असम और मेघालय के बीच चल रहा सीमा विवाद सुलझा। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स सरकार ने निवासियों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड में मूसलाधार बारिश जारी है। लिसमोर की विल्सन नदी शहर के सुरक्षात्मक तट से ऊपर उठ गई थी। शहर के आपातकालीन सायरन बजने के बाद अधिकारियों ने लिसमोर निवासियों को सोशल मीडिया पोस्ट और टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करके शहर के केंद्र को खाली करने की चेतावनी दी। कहा गया कि सायरन नहीं बजेंगे क्योंकि उनमें खराबी थी। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि सायरन क्यों नहीं काम कर रहे थे या उनकी मरम्मत कब की जाएगी। उधर क्वींसलैंड की प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे ने कहा कि डार्निंग डाउन्स क्षेत्र में बाढ़ के पानी में उनकी कारों से 5 लोगों को बचाया गया है। न्यू साउथ वेल्स की इमरजेंसी सर्विसेज मंत्री स्टेफ कुक का कहना है कि वो समझती हैं कि स्वयंसेवक और निवासी कितना थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार ये भी देखा है कि कैसे समुदायों ने कई प्राकृतिक आपदाओं के बीच सबको एक साथ लाया है।
I know that for many of you in the Northern Rivers region and the mid-north coast, it must feel as though this flooding emergency is never going to end. But I can assure you that there is light at the end of the tunnel. We will get through this disaster. We will stay on this journey until we get out the other side.
बाढ़ ने बायरन बे सहित उत्तरी नदियों और न्यू साउथ वेल्स के तटीय क्षेत्रों के शहरों को प्रभावित करना जारी रखा है। न्यू साउथ वेल्स के कार्यवाहक प्रीमियर पॉल टून ने राज्य की संसद को बताया कि वर्तमान में लिसमोर, कॉफ्स हार्बर और बलीना में लगभग 12,000 घर बिजली के बिना हैं। मूसलाधार बारिश के कारण बायरन बे की मुख्य सड़क भी इस समय पानी के नीचे है। स्थानीय बायरन बे निवासी जो ने SBS न्यूज को बताया कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा।
I was checking on my friend's cafe on the corner there to see if we can start cleaning it out, yes. But it's still flooded.
Yeah, it's pretty bad.
Yeah. I was born in Byron, never seen it like this, ever.
लेबर ने पुष्टि की है कि वो कल मंगलवार शाम को पेश किए गए बजट में गठबंधन द्वारा प्रस्तावित ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती और जीवन यापन के अन्य उपायों का समर्थन कर रही है। ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग के बजट में पेट्रोल की लागत को कम करने के लिए 6 महीने के लिए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क को आधा करने की बात है, जो हाल के महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। ALP के ट्रेजरी प्रवक्ता जेम्स चार्मर्स का कहना है कि उनका मानना है कि बजट बेकार के खर्च से भरा है और इसे केवल गठबंधन द्वारा चुनाव जीतने के लिए डिजाइन किया गया है। श्री चार्मन्स ने ABC को बताया कि वो केवल रहने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के उपायों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे ऑस्ट्रेलियन लोगों को तत्काल राहत की आवश्यकता है।
And they're actually going through the parliament right now. Our shadow cabinet met this morning, and as we've foreshadowed for some time, you know, we won't stand in the way of cost of living relief for working families who are facing another year of real wage cuts under this government. We will support that cost of living relief through the parliament. It will not make up for almost a decade now of coalition attacks on wages, job security, pensions and Medicare.
वृद्ध देखभाल प्रणाली के प्रतिनिधियों ने बजट के इस क्षेत्र में लिए निर्धारित धन के स्तर का विरोध करते हुए फेडरल संसद के बाहर रैली की है। वृद्ध देखभाल शाही आयोग को सरकार की प्रतिक्रिया को लागू करने के लिए 468.3 मिलियन का बजट प्रदान किया गया, लेकिन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का कहना है कि इसे जारी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने किसी भी सिफारिश को अभी लागू करना ही नहीं शुरू किया है। वो ये भी कहते हैं कि बजट वृद्ध देखभाल श्रमिकों के लिए वृद्धि को निधि देने में विफल रहा है। वृद्ध देखभाल क्षेत्र वर्तमान में फेयर वर्क कमीशन के समक्ष है, जो औसत वेतन को $29 प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए $5.40 और $7.20 प्रति घंटे के बीच की वृद्धि की मांग कर रहा है। एंड्रू लैमिंग को $10,000 से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जब संसद के खर्च रेगुलेटर ने पाया कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के खर्चों का गलत दावा किया था। श्री लैमिंग ने एक चिकित्सा सम्मेलन के लिए तस्मानिया की यात्रा के खर्च का दावा किया, लेकिन स्वतंत्र संसदीय व्यय प्राधिकरण ने पाया कि आयोजक उनके संबोधन से कुछ समय पहले तक उनकी उपस्थिति के इरादे से अनजान थे। श्री लैमिंग ने दावा किया था कि उन्हें इस कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में बुलाया गया था, लेकिन ये झूठा पाया गया। निवर्तमान लिबरल सांसद को अब $10,360 का भुगतान करना होगा, जिसमें 25% लोडिंग शुल्क शामिल है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उस आलोचना का जवाब दिया है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अयोग्य हैं। तीखी टिप्पणियां निवर्तमान लिबरल सेनेटर कॉन्सेटा फेरवंती वेल्स की ओर से आई है, जिन्होंने कल मंगलवार को देर रात के एक संसदीय भाषण में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सेनेटर जो सप्ताहांत में अपने सेनेट पद के लिए चुनाव हार गई थीं, उन्होंने दावा किया कि श्री मॉरिसन में एक नैतिक कंपास की कमी है और कोई विवेक नहीं है। उन्हीं के शब्दों में, कोट, एडेप्ट एट रनिंग विद फॉक्सेस एंड हंटिंग विद हाउंड्स, लैकिंग ए मॉरल कंपास एंड हैविंग नो कॉन्शियस, एंड कोट। श्री मॉरिसन ने SBS न्यूज को बताया कि वो सरकार की स्वतंत्र जांच प्रक्रिया के माध्यम से सेनेटर फेरवंती वेल्स को अपनी चिंताओं को उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
I understand that Senator Fierravanti Wells is disappointed that on the weekend 500 Liberal Party members came to decide who would contest for the Liberal Party in New South Wales. They rightly, in my view, backed strongly Senator Payne and Senator Molan, and Senator Fierravanti Wells was unsuccessful on this occasion. She's been successful on other occasions and on occasions with my very strong support, as Senator Hughes knows very well.
और भारत में असम और मेघालय के बीच चल रहा सीमा विवाद कल मंगलवार को सुलझा लिया गया है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक नए सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के बीच 50 सालों से सीमा विवाद बना हुआ था। 12 जगहों पर सीमा विवाद है, जिसमें से 6 जगहों का सीमा विवाद सुलझा लिया गया। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मंगलवार को श्रीलंका में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय अशांति को बढ़ा दिया है, और ये भी रेखांकित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की बात अब हल्के में नहीं ली जा सकती है। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक के लिए बोलते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चरण से गुजर रही है। कोविड की चुनौतियां अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन यूक्रेन में हाल की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय अशांति को बढ़ा दिया है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है और इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 75 सेंट और भारत के लगभग 57 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में, IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वो अपना पहला मैच पंजाब किंग्स से हार गई है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉन को आज श्रद्धांजलि देने के लिए मेलबर्न क्रिकेट मैदान में कई जाने माने चेहरों के साथ हजारों की संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद हैं। अपने असाधारण व्यक्तित्व से लगातार सुर्खियां बटोरने वाले वॉन 4 मार्च को थाईलैंड में अपने कमरे में अचेत मिले थे और उसके बाद उन्हें मृत घोषित किया गया। क्रिकेट के मैदान में अपनी गेंदों से दुनिया भर के बल्लेबाजों को अचंभित करने वाले वॉन मैदान के बाहर अपनी असाधारण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में सुबह के समय बौछारें, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। होबार्ट में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। सिडनी में बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।